अंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनमो गौरकृष्ण गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायिनो विरहकातरयागिनः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् सप्रथम अपने नित्य आराध्य ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों की वंदना करते हैं। मैं कुछ आरंभ कर रहा हूँ। आदरणीय वैष्णव माताएं बहनें, मैं अभी रशिया से आ रहा हूँ। वैसे तो इसके पहले 10 दिन पहले ही मैं लौटा था, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और होते हुए हवाई अमेरिका के सभी बड़े बड़े शहरों में, वहाँ से होते हुए इंग्लैंड और हॉलैंड इत्यादि देशों में प्रचार करके लौटा था। किंतु गुरु पूर्णिमा थी, इसलिए मुझे लौट करके आना पड़ा था, इसलिए मैं अभी रशिया गया। वहाँ पर एक कम्युनिस्ट देश में, जो कि पहले कम्युनिस्ट था, वहाँ कोई धार्मिक प्रवृत्ति नहीं थी। चर्चों को भी गिरा दिए थे, ध्वंस कर दिया था, कोई भी भगवत विश्वासी वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता था। जब वहाँ पहुँचा तो एयरपोर्ट में ही सैकड़ों लोग कीर्तन करते हुए मिले भीतर में, और सभी लोग देख रहे हैं ये कौन हैं, आए हैं और क्या कर रहे हैं। और जहाँ गया, हमारी यहाँ पर क्लास दे रहे हैं, धर्मसभा हो रही है, उसमें देखा जो पहले दिन ही 600-700 आदमी वहाँ पर आए और 7 दिनों तक वहाँ पर भाषण सुना। इसके बाद में मैं मास्को शहर में आया, वहाँ पर हजारों लोग, यहाँ तक बड़ी मुश्किल से अभी 50-60 आदमी होंगे कि 100 होंगे। कैसे उनको खबर मिल गई और कैसे हजारों लोग सुनने के लिए आए। और एक दिन के भाषण में ही या जाने कैसे हुआ, हमने कहा जी मांस मछली छोड़ना होगा, तो उन्हें हम तैयार हैं, मैं कह रहे जेसस क्राइस्ट और कम्युनिज्म इत्यादि को भी छोड़ना होगा। लेलिन यहाँ आए, उन्होंने जार को हटा करके, वहाँ के बादशाह जार को हटा कर कहा जी हम लोगों को सुख और शांति देंगे, सबको बराबर कर देंगे। तो वो जब तक जीवित रहे उन्होंने प्रयास किया, किंतु कुछ बराबर नहीं कर सके। धनी धनी रहे, अमीर रहे और गरीब गरीब ही रहे, कुछ लोग जरूर धनी ही, बुद्धि का डिवाइड नहीं उन्होंने, वो नहीं कर सकते। सभी की बुद्धि एक समान कैसे बनाएंगे, ऊंचाई लंबाई मोटाई कभी कैसे बनाएंगे, धन भी कैसे बराबर कर सकेंगे, कुछ ना कर सके। इसके बाद में स्टालिन आए, स्टालिन ने भी वही प्रतिज्ञा की, किंतु सारा जीवन प्रयत्न करके भी वो भी ये दूर की खाई नहीं मिटा सके, किसी को भी नहीं सुखी बना सके। क्रुश्चे आए, इसके बाद में और लोग आए, अभी हैं, नए नए तरह के सब चीज़ें आती हैं, कोई भी देश को सुखी नहीं बना सका और न बना सकते, बराबर कैसे कर सकते हैं। इसलिए वो लोग दुखी हैं, बड़े दुखी, जैसे विश्व के और लोग हैं ये लोग भी। किंतु मास्को को हमने देखा, अद्भुत, इंग्लैंड और अमेरिका के बड़े बड़े शहरों से भी देखा, बड़े बड़े वहाँ पर बिल्डिंग हैं, ऐतिहासिक बिल्डिंग हैं, बहुत बहुत सुंदर चीज़ें हैं। खूबी ये कि बड़े सरल, सभी नहीं, अधिकांश जो जनरल पब्लिक है बड़े धार्मिक प्रवृत्ति की है। हमने जो जो कहा उसको माना, गले में माला धारण किया, मांस मछली का त्याग किया, गाय का खाना बंद कर दिया। हमने कहा एकमात्र कृष्ण को ही ग्रहण करना होगा, क्रिस्ट जेसस क्राइस्ट, जो क्राइस्ट कौन है, ये कृष्ण शब्द से दक्षिण हमारे भारत में पूरी इत्यादि में उनको केस्ट कहते हैं या कृष्ण कहते हैं, कृष्ण से क्रिस्ट, कृष्ण से क्रिस्टस, और क्रिस्टस ही उनका कृष्ण से आया है, कृष्ण की उपासना ही उनके पिता हैं ना जेसस के, तो ये पिता कौन है, उनका नाम रूप तो होगा ही, रूप तो होगा ही, ये कृष्ण का ही रूप है, असल में वो कृष्ण के ही उपासक हैं, किंतु गड़बड़ी से कुछ ही इधर उधर हो गया। बातों को सुन करके बड़े प्रभावित हुए, एक दिन के अंदर ही 70 आदमी लोगों ने हरिनाम दीक्षा ली, दूसरे दिन भी 70, और उसके बाद में 20-25 और, साथ ही साथ उनके हृदय में भगवत भक्ति का विचार आया। यहाँ होना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है कृष्ण के प्रति भक्ति होना। यहाँ एक तो सारे देवताओं का भजन होने करने वाले, खान पान भी ऐसा है कि उसको छोड़ना बड़ा भारी मुश्किल है, एक निष्ठता नहीं है। हम कहेंगे सब देवताओं को छोड़ करके कृष्ण का भजन करो, बहुत ही कम आदमी है, दुर्लभ, दिल्ली में ये 50-60 ही आदमी नहीं है, एकांतिक भक्त बहुत बिरले हैं, ये भी एकांतिक भक्तों में से ही और लोग हैं। एकांतिक भगवान का भजन कैसे होगा, जो श्रीमद् भागवत का अवलंबन करेगा वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। व्यास जी सब धर्मों का प्रवर्तन किया, वेदों का विभाग किया, पुराणों को उन्होंने प्रकाश किया, वेदांत की रचना की, सब कुछ, महाभारत की रचना हुई, उसके अंदर में गीता भी आ गया, तभी प्रसन्न नहीं रहे, तब नारद जी की कृपा से कृष्ण ही स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह समझा, और कृष्ण के भजन करने से सबका भजन हो जाता है, तब उनके समझ में आया, तब उन्होंने गोपियों की महिमा, ब्रजवासियों की महिमा का वर्णन किया, और कृष्ण ने उसमें बतलाया न पा रहे हम निर्वध सिंधु, मैं गोपियों के ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता, चाहे लाखों जन्म मुझे लेना पड़े ये मेरे लिए संभव कर, इसलिए श्रीमद् भागवत जो है वही प्रमाण है, उसके अनुसार में अपने जीवन को हमको बनाना है, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। मैं कुछ उपाख्यानों के द्वारा एक दो उपस्थित करके आप लोगों को समझाने की चेष्टा करूंगा, ऐसी तो नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा उपनिषदों का एक उपाख्यान है, किसी समय में देवताओं और दानवों में युद्ध चल रहा है, देवता कौन है और दानव कौन है, दौर एक जो भगवान को मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं वो देवता हैं, जो ठीक इसके विपरीत भगवान पर विश्वास नहीं है, जो लोग ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मज करो, वो लोग हैं दैत्य दानव। पहले एक दो, दो चार, पांच, दस, बीस होते थे, आजकल कलयुग में अधिकांश लोग दैत्य दानव हैं, क्योंकि खाते पीते मौज करते हैं, तो ये इन्होंने सुना, जो आत्मा आत्म तत्व को जान लेगा वो कभी नहीं मरेगा, वो अजर अमर हो जाएगा। वह एक रस है, उसका परिवर्तन नहीं होता, नित्य नवीन है और आनंदमय है। इस तत्व को जो जल जान लेगा वो पृथ्वी को पराभूत कर सकता है, पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता है। असुरों ने सोचा कि इस तत्व को जानने तो देवताओं को हम पराजित कर देंगे, और देवताओं ने भी सोचा कि इस तत्व को हम यदि जान लें तो हम असुरों को पराजित कर देंगे। भीतर का तात्पर्य समझा नहीं इन लोगों ने, दोनों ने, देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के उस समय विरोचन थे, दोनों लोगों ने निश्चित किया कि इस तत्व को जानने वाले ब्रह्मा जी हो सकते हैं, इसलिए उनके पास में जाकर के इस तत्व को हम जानें। ब्रह्मा जी के पास में ये दोनों गए कि हम लोग आत्म तत्व जानना चाहते हैं, अजर अमर हो जाना चाहते हैं, आनंदमय हो जाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, तुम लोग योग्य पात्र हो, जब आए हो तो 25 वर्ष तक हमारे यहाँ रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करो और हमारी सेवाएं जो हैं उसको करो, 25 वर्ष के बाद में तुमको कुछ उपदेश देंगे। 25 वर्ष रहे, सात्विक भाव से रहे, ब्रह्मचर्य से रहे, वहाँ की जो सेवाएं हैं सेवाएं करते रहे। 25 वर्ष के बाद में जब वो लोग आए दोनों, तो दोनों को आज देखो, 25 वर्ष तक तुमने दाढ़ी और सिर का मुंडन नहीं कराया है, अब तुम लोग अपने स्वरूप को देखो आईने में और देखो, और इसके बाद में मुंडन करा करके सुंदर वेश बनाकर और उसे सजाकर अच्छे अच्छे कपड़े धारण करके हमारे साथ पास में आओ। जाकर के उन्होंने मुंडन कराया, भद्र वेश बनाया, सुंदर अलंकार धारण किया और उनके पास में पहुँचे। उन्होंने कहा जी देखो, यही आत्मा है, आत्मा शरीर ही आत्मा है, शरीर यदि सुखी रहेगा तो तुम लोग सुखी रह सकते हो, इसको जानने से तुम लोग अमृत हो सकते हो, वही आत्म तत्व अपरिवर्तनीय है, आनंदमय है, उसका कभी भी परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, एक रस होता है। विरोचन इस चीज को ग्रहण किया और वो लौट गया अपनी राजधानी में, और इस शरीर को ही आत्मा मानकर इसको सुखी बनाने की चेष्टा में वो लग गया है। क्या किया उसने, इस आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है शरीर के अतिरिक्त, ऋणं कृत्वा घृतम पिबे, ऋण करके भी घी खाओ, क्योंकि आयुर्वै घृतम, फिर से ही आयु होती है, उसे शरीर पुष्ट होता है, इसलिए इस मरने के बाद में कौन देखने आता है ये ऋण कौन लेता है देता है। भस्मीभूतस्य देहस्य किं पुनरागम, उसका आगमन तो है नहीं, मर जाएगा शरीर तो, इसलिए यही शरीर सर्वस्व है, खाओ पियो मौज करो, इसी में सुखी रहो, जो आजकल की देन है, कलयुग में प्राय ऐसा ही होता है, यही प्रधान चीज है, बहुत कम लोग भक्त होते हैं। और उसने कहा कि यही शरीर ही आत्मा है, अजर है, अमर है, शाश्वत है, आनंदमय है, यही नास्तिक धर्म का उसने प्रचार किया, शरीर ही है आत्मा और कुछ अलग से आत्मा नहीं है। इंद्र जी जब ब्रह्मा जी के पास से यह सुन करके लौटे तो कुछ आने के बाद में उनके अंदर में भावना हुई, भाई ये शरीर तो पहले दाढ़ी गोंफ और ये सब कुछ गंदा था, अब हम लोगों ने इसको शेविंग कर दिया और इसका मंडन कर दिया और श्रृंगार किया, ये तो बड़ा सुंदर अब लग रहा है, तो इसका तो परिवर्तन है, और अभी कोई दुख आ जाएगा तो क्या होगा, इसमें कोई रोग हो गया तो, यदि हाथ पैर काटने पड़े तो, दुबला हो गया तो इसमें परिवर्तन भी है, और इसमें आनंद तो है ही नहीं, क्षण क्षण में दुख और सुख की अनुभूति होती है, इसलिए ये तो एक रस आत्मा नहीं हो सकता, ये अपरिवर्तनीय नहीं है, जरूर कुछ गुड़ बात है, बस ये शरीर आत्मा नहीं। बीच रास्ते से लौट आए, लौट करके बोले कि हमको कुछ शंका हुई, मैं क्या शंका हुई किसे लौट आए, हम कुछ ऐसे मालूम हुआ कि कुछ गूढ़ रहस्य इसमें है। आत्मा कैसे अजर अमर हो सकती है, शरीर और शरीर आत्मा कैसे हो सकती है। शरीर में देखते हैं कि बार बार इसमें रोज रोज परिवर्तन होता है, जन्म लिया, वर्धित हुआ, युवावस्था आई, फिर वृद्धावस्था आई, फिर मर गया, तो ये नित्य कहाँ है। और आनंद की बात, आनंद की तो परीक्षा ही इसमें नहीं है, इसलिए ये शरीर आत्मा अजर अमर नहीं हो सकता है, ये मेरे अंदर में भाव है। ठीक है, ठीक है, तुम ठीक सोचा, अच्छा 25 वर्ष और रहो, ब्रह्मचर्य के साथ में रहो, सात्विक वस्तुओं को ग्रहण करना, और इस प्रकार से रह करके तब फिर हमारे पास आओ। 25 वर्ष के बाद में फिर हुआ है, भैया देखो मैं गूढ़ रूप से उपदेश देता हूँ, इस शरीर के अंदर में ये शरीर आत्मा नहीं है, किंतु जो स्वप्न को देखता है और स्वप्न में आनंदित भी होता है, उसको शारीरिक क्लेश नहीं है, उस शरीर का परिवर्तन नहीं है, इसलिए वही आत्मा अजर अमर शाश्वत है। इसलिए उस स्वप्न पुरुष को देखो जो स्वप्न देखता देखने वाला है, ये शरीर स्वप्न नहीं देखता है, इसलिए उसको खोजो और तुम अजर अमर हो जाएगा, और विश्व को तुम जय कर सकता है, तुमको कोई पराभूत नहीं कर सकता। चले ठीक, आधी रास्ता जाने के बाद में सोचा स्वप्न जो देखने वाला है वो तो अजर अमर हो नहीं सकता, एक रास्ता होगा नहीं, नाना प्रकार के स्वप्न देखता, वो देखता कि हमको कोई सिर काट दिया, भयभीत हो जाता है, और कभी देखता कि आकाश से मैं गिर रहा हूँ, कभी कुछ देखता है, इसलिए ये आनंदमय भी नहीं है, उसमें दुख भी है, इसलिए स्वप्न देखने वाला दृष्टा जो पुरुष है वह कभी भी आत्मा नहीं हो सकता है, आनंदमय तो है नहीं। लौट करके फिर आए, गुरुजी आपने जो कहा वो बात सत्य हो सकती है किंतु मेरी समझ में नहीं आई, ये स्वप्न देखने वाला पुरुष ये कैसे आत्मा हो सकती है, इसमें तो दुख है सुख है, इसमें परिवर्तन है, इसमें आनंद है नहीं, तो फिर ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तुमने सोचा है, ठीक है 25 वर्ष और रहो, ब्रह्मचर्य के साथ में सेवा करो और तब फिर हमारे पास में आओ। वैष्णवों की सेवा करना, उनका संग करना और ब्रह्मचर्य रहना, ठीक 25 वर्ष के बाद में आए। देखो सपने से भी अतीत, जब गहरी निद्रा में जो सो जाता है तभी तो श्वास आता जाता है किंतु अनुभव नहीं होता, संसार का कोई सुख और दुख भी उसको स्पर्श नहीं करता, वो आनंदमय पुरुषात्मा है, वो एक रस है, उसको जान लेने से तुम भी अजर अमर हो जाओगे और विश्व को पराजित कर सकते हो, सुखी रह सकते हो। ठीक, फिर लौटे, फिर विचार किया स्वप्न जो नहीं देता है, घोर निद्रा में जो चलता है तो भी उसका अस्तित्व रहता है, किंतु मैं हूँ उस समय ये भी मालूम नहीं होता, तो जब मैं ही नहीं हूँ, देखने वाला ही नहीं है, स्पर्श करने वाला है, उस समय आनंद की अनुभूति नहीं होती, दुख की अनुभूति नहीं होती, ये बात तो ठीक है, किंतु वो आनंदमय पुरुष कैसे हो सकता है। और फिर जग जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वही शरीर में भावना आ जाती है, इसलिए वो भी पुरुष नहीं हो सकता है। लौट करके आए, ब्रह्मा जी से कहा बंजे ठीक है अब तुम ठीक हुआ, अब 25 वर्ष और 100 वर्ष पूरा हुआ ना, 100 वर्ष के बाद में और 25 वर्ष के बाद में यहाँ आना, बुद्धि शुद्ध हो रही है, आत्मा भी उसकी कुछ शुद्ध हो रही है संग से, और ब्रह्मा जी तो हमारे परंपरा के गुरु हैं, उनकी सेवा करने से क्या होगा, चित्त शुद्धि तो जरूर होगी ही। फिर और जब लौट करके आए 100वें वर्ष में, तो उन्होंने कहा ये देखो जो सुख दुख अनुभव करता है किंतु सुख दुख नहीं से ऊपर है, जो स्वप्न देखता है किंतु स्वप्न नहीं है, जो सुनता है किंतु कान नहीं है, कान के माध्यम से जो सुनता है, जो मस्तिष्क से मन से बुद्धि से करता तो कुछ है किंतु वो बुद्धि और इसे भी अतीत है, वो भगवान का नित्य दास है, वो भगवान का नित्य अंश है। ममई वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, वो सनातन है, वो उनका अंश है, एटर्नल सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है वो। गीता भागवत तुलसीकृत रामायण में या वाल्मीकि रामायण में हमारे उपनिषदों में सर्वत्र इस बात की को कहा गया है, आत्मा अजर अमर है। किंतु कृष्ण विस्मृति के वजह से, कृष्ण को भूलने के वजह से ये संसार में देहाशक्ति में आकर के इसी को ही समझने लगा। भगवान से विच्युत होने के कारण नाना प्रकार के योनियों में दुख सुख में भटक रहा है, कोटि कोटि जन्मों से, एक जन्म से नहीं। आप लोग पहली बार संसार में नहीं आए हैं, पहली बार ही मनुष्य नहीं, कितनी बार हुए। शुद्ध वैष्णव धर्म में, भक्ति धर्म में आप लोग प्रवेश नहीं कर सके, इसलिए भगवान को नहीं जान सके। इसलिए जीवात्मा क्या है, भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, उनका अंश है, किंतु भगवान नहीं है। शरीर से वो चलता फिरता ये सब, किंतु शरीर नहीं है। मन से विचार करता है, मन भी नहीं है, वो शुद्ध आत्मा है। वो अभी इस कारागार में पड़ा हुआ है, यह संसार एक कारागार है। जिन्होंने इसको ही सत्य मान लिया वो सुखी नहीं रह सकते। इसलिए कलयुग में उसी भगवान ने जगत के लोगों का कल्याण करने के लिए नाम के रूप में अवतीर्ण हुए, सारी शक्तियां नाम में अर्पित कर दिया, उनकी कृपा भी सब कुछ नाम में अर्पित कर दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में प्रभु का दर्शन बड़ा कठिन है किंतु नाम के प्रभाव से हो सकता है। इसलिए नाम को स्वयं कृष्ण समझना चाहिए, कृष्ण से अभिन्न है, उसकी सारी शक्तियां उसमें हैं, उसके द्वारा ही कलयुग में संभव पर है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है जो कि हम अपने स्वरूप में आकर के भगवान की सेवा कर सके, जन्म मरण से अतीत हो सके। इसलिए बतलाया हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिः। जो विद्वान हैं, जो मूर्ख हैं, जो मुसलमान हैं, जो हिंदू हैं, जो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, यहाँ तक कि पागल भी भगवान का नाम कर सकते हैं। बल्कि बुद्धिमान अधिक हैं, विद्वान हैं, उच्च कुल में आए हैं, उनके लिए जरा कठिन है भगवान का भजन, किंतु साधारण जो हैं उनके लिए कठिन नहीं है। दिन में भी रात में भी चलते फिरते सब समय इन भगवान का नाम कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे याज्ञवल्क ऋषि को, वो ब्रह्मवेत्ता पुरुष थे, राजा जनक के दरबार में रहते थे, राजा जनक के एक तरह से गुरु हैं। उनकी दो पत्नियां थीं, कात्यायनी और मैत्रेय, दोनों बड़ी भक्त थी, पति सेवक थी, पतिव्रता थी। जब इनकी उम्र आधी हो गई, आधी से अधिक हो गई, चाहे 100 वर्ष समझ लीजिए आयु उस समय, तो वो 50 वर्ष के हो गए। यदि 10,000 वर्ष की आयु उस समय में होती या लाख वर्षों की, तो 50 वर्ष आयु हो गई। तो उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा, तुम्हें बेटे और बेटियां हो गई, तुम लोगों को रहने के लिए हमने राजभवन हमने बनाए, लाखों गायों का दान तुम लोगों को ये मिला हुआ है, सोने के अलंकार तुम्हें हैं, सब प्रकार से अब तुम आत्मनिर्भर है, और मैं भी अब बूढ़ा होने चला, इसलिए आप लोग हमें आदेश दें, हमें ये क्या आदेश ही दें कि मैं जाकर के कुछ एकांत स्थल में भगवान का स्मरण करो। अभी तक मैंने एकाग्र रूप में संपूर्ण रूप से भगवत भजन नहीं किया, उनका चिंतन नहीं किया। उनमें कात्यायनी ने कहा, आप हमारे पति हैं, अब हम हमारे बच्चे हैं, काफ़ी धन है, सब कुछ है, अब संसार भोग की कोई लालसा नहीं है, आप खुशी से जा सकते हैं और आप भगवान का भजन करें। मैत्रेयी ने कहा आप जा सकते हैं किंतु हमारे एक प्रश्न हमारा है, एक शंका हमारी है, उसको दूर करके जाइए। उन्होंने जो क्या है शंका, तो शंका ये है कि आपने हमें स्वर्ण धन दिया, बच्चे भी दिए, राजभवन भी दिया, कोई चीज़ की कमी नहीं रही, आपने सब कुछ दिया, ये बतलाइए कि इसके द्वारा हम सुखी हो सकती हैं जीवन में कि नहीं। सुनते ही चौंक पड़े और बोले यथार्थ में तू ही हमारी धर्म पत्नी है, कोई भी इसे सुखी नहीं हो सकता है जो चीज हमने तुमको दिया, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम सुखी इसको लेकर के रहें, आप एकांत में भजन करने क्यों जा रहे हैं, इसलिए संसार में इसे कोई सुखी नहीं हो सकता, आप बतलाइए कि हम कैसे सुखी हो सकते हैं, हमारी आत्मा कैसे सुप्रसन्न हो सकती है, जय आत्मा संप्रसिद्धि, कैसे आत्मा सुखी हो सकती है, शरीर के सुखी होने से, मन के सुखी होने से आत्मा सुखी नहीं रह सकती है कोई योगी, आत्मा के सुखी रहने से शरीर मन सब कुछ सुखी रह सकता है, जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि हो सकती है। श्रीमद् भागवत में ही ऐसा ही प्रथम स्कंद के प्रथम या द्वितीय या तृतीय अध्याय में ये सब चीज़ें आई हैं, बिना भगवत भजन किए हुए सवई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रथो कजे अहे तुक्का प्रतिहता ज्यात्मा संप्रसिद्ध। आत्मा कभी प्रसन्न होगी जब वो भगवान की सेवा में नियुक्त होगी, यदि सेवा में नियुक्त नहीं भी होती उनका स्मरण और कीर्तन करने से श्रवण करने से ये सहज ही धीरे 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 हो सकता है। वासुदेवे भगवती भक्ति जो यह प्रयोजित जनयत आशु वैराग्यम ज्ञानंच जद अहेतुकम, भक्ति आने से साथ ही साथ में उसकी क्रियाएं भी आरंभ हो जाती है, विशेष विज्ञान प्रेम सहित भक्ति उसमें उपस्थित होती है और ज्ञान जितने तत्व हैं, कृष्ण तत्व, माया तत्व, जीव तत्व, भक्ति रस जो कुछ है ये सभी उसको ज्ञान हो जाता है, साथ ही साथ में होगा एक साथ में। इसके लिए बहुत से श्रीमद्भागवत में ये सब दिए हैं, यथा तरो मूल निशीचिन तृप्यन्ति ततस्कंद भुजो उपशाखा प्राणोपहार जथेन्द्रियाणम तथैव सर्वाहरण अच्युत। जैसे पेड़ के जड़ में पानी देने से पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, उसमें फल लगते हैं, उसकी डालियां भी मोटी होती है, पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है केवल जड़ में देने से, और यदि उसके फूल और पत्तियों और फलों में जड़ पानी दें तो क्या होगा, वो पौधा सड़ जाएगा। गुलाब का पौधा उसके फूल में दो, उसके पत्तियों में दो, जड़ में ना दो तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद में वो सड़ जाएगा। जैसे आहार मुख में दे रहे हैं तो इंद्रियां सबल रहेंगी, यदि आँख में वही आहार दो, पेट में वही चीर करके दो तो क्या होगा, मरोगे। उसी प्रकार से सारे विश्व की जड़ कौन है, ये कृष्ण है, उनकी सेवा करने से, उनका नाम कीर्तन करने से आत्मा सुखी होगी, सभी लोग सुखी हो सकते हैं क्योंकि सबकी ये जड़ है। और कृष्ण का भजन नहीं किया गया, उनकी विभूतियों का भजन किया, विभूति माने देवता वर्ग इत्यादि, ब्रह्मा हैं, शंकर हैं, गणेश हैं, दुर्गा हैं, सूर्य हैं, तो क्या होगा, उनकी विभूति हैं। जपन्न देवता भजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कंते व जगत, किंतु अविधपूर्वक, वो अविधपूर्वक है, देवताओं की उपासना भी भगवान की उपासना है, किंतु उपासना तो कृष्ण ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि वो सब भोक्ता हैं, किंतु वो उसका जो उपासक है वो देवताओं को देवलोक में ही जाएगा और वहीं से फिर भ्रष्ट होगा। ते तंग भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्या जानति मत जा जिन अपिमान, देवताओं का भजन करने वाला उसकी उपासना तो भगवान के पास में चली आएगी, जैसे पर्वत से वर्षा हो रही है तो पर्वत का पानी कहाँ आएगा, किंतु पर्वत समुद्र नहीं हो जाएगा, पर्वत समुद्र में नहीं पहुँचेगा। उसी प्रकार से जो देवताओं का जो भजन करते हैं उनकी उपासना तो भगवान जैसे तैसे वहाँ पर पहुँच जाएगी, क्योंकि उनके अतिरिक्त तो दूसरा कोई है ही नहीं, किंतु वो व्यक्ति जो है वो देवलोक में जा कर के फिर वहाँ से गिर जाएगा, क्योंकि वो नश्वर लोक हैं। किंतु भगवान का क्या है, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमानंद, किंतु भगवान और भगवान का धाम यह नश्वर नहीं है। किसी प्रकार से भी उनका नाम करने से अनर्थ युक्त अवस्था में भी देह में आत्मविमान होने पर भी यदि नाम करो तो उसका फल कुछ न कुछ होगा। कैसे होगा, आग है नहीं जानते हो, किंतु आग में हाथ डालो तो क्या होगा, क्यों जलाएगी। एक बच्चा है आग को नहीं जानता तभी तो जलाए हाथ देगा तो जलेगा, ऐसे ही समझो भगवान का नाम बड़ा प्रभावशाली है, क्रिया होगी, किंतु कुछ अनर्थों के कारण डायरेक्ट जो कृपा भगवान की होती है मुक्ति होकर के कृष्ण के चरणों में प्रेम होकर के उनकी नित्य सेवा ये नहीं होगी। ऐसे साधारण रूप में वो समृद्ध होगा, अच्छे घरों में जन्म ले सकता है, धन जन परिवार उसके होंगे, किंतु शुद्ध भक्ति जो है जो गोलोक वृंदावन में ले जाने वाली है ये नहीं मिलेगी। इसके लिए तो रसिक वैष्णवों के पास में उनके सत्संग में रह करके उनकी सेवा करनी है। इसलिए संक्षेप में हमने कहा कलयुग में यह काम सही रूप में चलते फिरते उठते बैठते छींकते समय में भी यदि हरि नाम कर दिया निकल गया तो भी कल्याण ही कल्याण है। इसलिए नाम के ऊपर में विश्वास रखेंगे और नाम को करेंगे, धीरे धीरे अनर्थ भी दूर हो जाएंगे, हृदय में प्रेम भक्ति आएगी और ये संसार से सदा से मुक्त होकर के उनकी सेवा करेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए अंत में उन्होंने कहा है श्रीमद्भागवत के अंत में क्या है, सर्व नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पापो प्रणाशनम, संकीर्तनम जस्य जिनका संकीर्तन विश्व को पवित्र करता है, अनर्थों को दूर करता है, दुखों को भी हरण कर लेता है, ऐसे जो हरि जो परम हैं परम हरि उनको मैं प्रणाम करता हूँ, ये कह करके श्रीमद्भागवत को सुना। इसलिए संक्षेप में हमने थोड़ा सा बताया और बहुत अधिक रात हो जाएगी इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अभी कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद में होगा फिर हम लोग दिल्ली में कहीं दूसरी जगह तो फिर धीरे धीरे आप लोग भगवान में खूब श्रद्धा रखिए, भगवान के भक्ति बिना कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। शंकर जी हनुमान जी गणेश जी सूर्य जी उन्हीं की उपासना करते हैं, सवितुर वरेण्यम वो सूर्य के भी वरेण्य हैं। गौर प्रेमानंदे।